मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून सतत केवल ज्ञान पाने पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंड स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, जीवन को बहुत अच्छा बनाने के बहुत सारे उपायों में से सबसे आसान उपाय है सत्संगति और सेवा। आज वर्तमान में ये दोनों चीज़ें भी यदि हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। सब समझते हैं कि संगति का हमारे ऊपर असर पड़ता है। जैसी हमारी संगति होती है वैसा हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। यह ऐसा भी कह लें जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसी हम संगति करते हैं। दोनों ही चीज़ें, पर संगति का हमारे जीवन में असर अवश्य पड़ता है। आचार्य महाराज एक उदाहरण हमेशा देते हैं संगति को लेकर के कि पानी बरसता है और अगर वो धूल में गिरे तो वो पानी कीचड़ में बदल जाता है, और अगर वो नीम के पेड़ में गिरे तो कड़वा हो जाता है, और अगर वो गन्ने के वृक्षों में जाए तो मीठा भी हो जाता, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता। ये हम सब लोग जानते समझते और पढ़ते भी हैं। तब फिर हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमारी अच्छी संगति हो। सबसे पहले तो हमारे सबसे निकट अगर कोई है तो वो हमारा अपना शरीर है। अगर हम देखें तो अपने शरीर के निकट सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसकी संगति उसकी सोबत 24 घंटे हमारे साथ है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, 24 घंटे जिसके साथ रहना है तो उसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करें, उसकी संगति से हम अपने जीवन को चाहें तो अच्छा भी बना सकते हैं और चाहें तो पतन के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। और फिर इस शरीर के ही हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, वे भी हमें बिना चाहे, कोई अगर नहीं चाहे तब भी वे रिश्ते मिले हुए हैं। भाई हमारा शत्रु की तरह व्यवहार करे पर फिर भी हमारा भाई है, उसमें हम चॉइस नहीं कर सकते, वो तो हमें मिला हुआ है। तो ये जो शरीर है और शरीर के संबंध हैं जिनकी संगति हमें हमेशा से मिली है, इनमें तो हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन इसके बाद जो संगति हम करते हैं उसे किस तरह से करना है इस पर तो हम विचार कर ही सकते। अच्छी संगति का फल अच्छा मिलता है, बुरी संगति का बुरा मिलता है, ये भी हम सब समझते हैं। एक उदाहरण आता है कि हंस और कौवा एक ही वृक्ष पर बैठे थे, तो कौवे ने कहा कि भाई तुम भी मेरे जैसे ही उड़ने वाले प्राणी हो, बस जरा सा रंग का फर्क है, हमारा रंग थोड़ा काला है, तुम्हारा उजला है, धौला है, बाकी तो हम और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है। हंस ने भी सोचा कि ठीक है, अब एक से भले दो तो कुछ बातचीत ही होगी, चलो कर लेते हैं संगति, और दोनों के बीच वार्ता शुरू हो गई। और ये क्रम रोज चलने लगा, एक तरह से मित्रता हो गई दोनों में। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस वृक्ष के नीचे एक राहगीर आकर के रुका, तो बहुत धूप बहुत थी, पेड़ में से भी कहीं कहीं से धूप उसके ऊपर पड़ रही थी। तो हंस ने सोचा कि इसको धूप से बचाने के लिए क्या करें, ये पेड़ की शरण में आया है। तो उसने अपने बड़े बड़े पंख दोनों ऐसे फैला लिए जिस शाखा पर बैठा हुआ था, ताकि थोड़ी धूप बच जाए इतनी भीषण गर्मी में। और उतने में कौवे के मन में पता नहीं क्या आया, और उसने कौवे ने बीट गिरा दी और उड़ गया। बीट गिरते ही और वो राहगीर नाराज हो गया, गुस्से से भर गया, ऊपर की तरफ उसने देखा तो वहां तो उसको पंख फैलाए और हंस ही दिखाई पड़ा। उसने कुछ विचार नहीं किया और सीधा निशाना हंस की तरफ लगा करके तीर छोड़ दिया। हंस नीचे गिर गया। गिरते समय, मरण को प्राप्त होते समय उसने राहगीर से सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने खोटी संगति का फल प्राप्त किया है, किसी और का दोष नहीं है, मेरा ही है। ये हमारे अपने जीवन में हम चाहें तो इससे शिक्षा ले सकते हैं कि इसी तरह हम भी जिन लोगों के आसपास, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। किसी व्यक्ति का हमारे साथ होना और हमारा किसी के साथ होना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अच्छे व्यक्ति के निकट बुरा व्यक्ति आ रहा है तो चांसेस उसके अच्छे बनने के हैं, ये ध्यान रखिए। और एक अच्छा व्यक्ति, अगर उसका इंक्लाइनेशन, उसका झुकाव एक खोटे व्यक्ति की तरफ है, तो मानिएगा कि उसके भी उसी तरफ झुकने के चांसेस ज्यादा हैं। ये दोनों चीजें हैं, वरना फिर मन में ये आएगा कि अरे फिर जो व्यक्ति आप कह रहे हैं कि अच्छी संगति करना चाहिए, तो जिसके अच्छे संस्कार नहीं है वो अच्छे लोगों की संगति करेगा तभी ना उसको कुछ अच्छा मिलेगा, तो फिर इससे तो जो अच्छा व्यक्ति उसका लॉस होगा। नहीं, संगति किसकी कौन कर रहा है इस पर निर्भर करता है। हम अच्छाइयों की संगति कर रहे हैं तो हम अच्छे बनेंगे, हम बुराइयों की संगति कर रहे हैं, व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति के भीतर जो अच्छाइयां बुराइयां हैं उनमें हमारा किस तरफ रुझान है। अगर व्यक्ति की अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान है तो हम कैसे भी हो हमारे अच्छे बनने की शुरुआत होगी, और व्यक्ति के अंदर की बुराइयों की तरफ अगर हमारा ध्यान है तो मानिएगा हमारा जीवन बुरा बनना शुरू होगा। ये शरीर जो कि जिसकी संगति हमें 24 घंटे है, इसको हम विषय और कषायों में लगा दें तो यही शरीर जो इसकी बुराइयां हैं वो हमारे आत्मा को भी पतित करे, और इसी शरीर से हम अगर अच्छाइयां करना शुरू कर दें, दूसरे का भला शुरू कर दें करना, तो मत मानिएगा इसी शरीर की संगति हमारे जीवन को अच्छा बनाना शुरू कर दे। तो हमें संगति करने से पहले ये जरूर विचार करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहता हूं तो मुझे जो अच्छाइयां हैं उनकी ही संगति करना है। इसीलिए सत संगति शब्द लिखा हुआ। सत यानी जो भला है, प्रशस्त, अच्छा है, उसकी संगति करना। व्यक्ति अच्छा बुरा है ऐसा नहीं, व्यक्ति के भीतर अच्छाइयां और बुराइयां हैं, उनमें से मुझे किसकी संगति करनी है? मुझे व्यक्ति की अच्छाइयों को देखना है या उसकी बुराइयों को देखना है, और किससे मुझे प्रेरणा लेनी है? मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको सुनाऊं तो जरा समझ में आएगा कि ये क्यों कहना पड़ा मुझे। बहुत सीधी सी चीज कह देते ना कि अच्छे लोगों की संगति और बुरे लोगों की संगति। नहीं, अच्छे व्यक्ति के भीतर भी कोई अगर कमजोरी है तो आप उसकी संगति करेंगे तो वो अच्छा व्यक्ति भी आपके जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा, ये ध्यान रखें। और यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और उसकी उन बुराइयों के प्रति आप सजग हैं तो वे बुराइयां आपके भीतर नहीं आ पाएंगी, ये भी संभव। दो बेटे थे एक ही पिता के, और एक बहुत ईमानदार, सच्चा और सरल था, और दूसरा बहुत बेईमान और बहुत बिगड़ा हुआ था। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ उस बिगड़े वाले और खराब बेटे से पूछा कि तुमने ये सब कहां से सीखा, ये सब आदतें तुम्हारे भीतर कहां से आई? तो उसने कहा, रे आपको नहीं मालूम, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं वैसा नहीं बनूं। तो लोगों ने फिर उससे पूछा कि तुम इतने भले और इतने ईमानदार क्यों हो? तो उसने कहा, मैंने अपने पिता से सीखा। अरे बड़ा आश्चर्य, वो कह रहा है कि मैं बेईमान हूं और बुरा हूं, तो ये मैंने अपने पिता से सीखा, और आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं और ईमानदार हूं, तो ये मैंने अपने पिता से सीखा। तो उसने कहा कि मेरे पिता के भीतर जो बुराइयां थीं, जो कमियां थीं, उनको देख देख करके, उनको मैंने दुख उठाते देख करके, उनकी अपनी बुराइयों से मैंने प्रेरणा ली कि अपने को ये सब नहीं करने का, इससे अपने को बचना चाहिए। मैंने ऐसा सोच करके और अपने जीवन में उन बुराइयों से मैं दूर रहा, उन बेईमानी से मैं दूर रहा, तो मेरा जीवन भला और ईमानदार बन गया। बताइएगा, इसमें मेरे पिता का ही तो हाथ है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि हम व्यक्ति के भीतर की बुराइयां देख करके और उससे भले बनने का मैसेज भी ले सकते, और हम व्यक्ति के भीतर की अच्छाइयों को देख करके उससे ईर्ष्या करके और उन सबको नहीं करके अपने जीवन को पतित भी कर सकते। हमारे चॉइस पे निर्भर करता है कि हम किस तरह संगति कर रहे हैं, हम अच्छी चीज की संगति कर रहे हैं या कि हम बुरी चीज की संगति कर रहे हैं, इससे हमारा जीवन अच्छा और बुरा बनता है। और दूसरी चीज, हम सेवा का भाव रखें। ये दोनों चीजें आज धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक व्यक्ति और सैकड़ों चीजें रह सकती। ये संगति हमने जड़ की शुरू कर दी है। पदार्थों की संगति हम ज्यादा करते हैं, चेतना से हम दूर रहे आते हैं। और सेवा भी हम जड़ पदार्थों की करते हैं, चेतना की नहीं करते। पहले लोग घोड़ा घर में रखा करते थे सवारी के लिए, तो उसके सिर पे हाथ भी फेरते थे, उसकी सेवा करते थे, दाना डालते थे उसको। और अब तो पेट्रोल भरवाने जाते हैं, गाड़ी को पोंछा लगाते हैं। जड़ पदार्थों में हमारा जीवन निकल रहा है, देखने में आ रहा है। उतनी ही सेवा हमें उस जड़ पदार्थ की अगर चेतन की होती तो परिणामों में निर्मलता आती। उसके सिर पे हाथ फेर करके देखें कभी पालतू अपने घर में पले हुए गाय के सिर पर, और उसकी आंखों में झांक करके देखें तो वहां प्रेम दिखाई पड़ेगा। लेकिन स्कूटर में झांक करके देखेंगे तो प्रेम नहीं दिखाई पड़ेगा वहां कहीं भी। बहुत बहुत सहज सी चीज है, लेकिन कैसा समय परिवर्तित हुआ। हम चेतन पदार्थों से धीरे धीरे दूर हटते गए और हमने सेवा शुरू कर दी है। हमारा सारा समय उन्हीं जड़ वस्तुओं की सेवा में व्यतीत हो जाता है, उन्हीं के संरक्षण, संवर्धन और अर्जन में हमारा समय व्यतीत होता है। अगर हमने संरक्षण, संवर्धन और अर्जन किया होता चेतना का, तो ये सच्ची सेवा होती और हमारा जीवन ऊंचा होता। अब क्या करें, अब तो घोड़ा ला नहीं सकते, स्कूटर बेच करके मिलेगा ही नहीं। तो मैं ऐसी सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम सेवा फिर किसकी करें। इन सब में हम अपना व्यर्थ वक्त जाया ना करें, यह तो कर ही सकते हैं कि मैं अपने शरीर के श्रृंगार में, मैं अपने शरीर के रखाव संभाल साज में, इन सब में बहुत अधिक वक्त न लगाऊं। इसी तरह से जो बाह्य वस्तुएं हैं उनके रख रखाव में मैं ज्यादा वक्त न गवाऊं, और अपने चेतना और अपने आसपास जो भी परिवेश में जो चेतना है उसके विकास के लिए भी प्रयत्न करूं। वास्तव में सच्ची सेवा वही है जितमें जिसमें कि हम अपने और अपने आसपास के लोगों के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, वही सेवा है। किसी को पहनने के लिए कपड़े दे देना, खाने के लिए भोजन दे देना, रहने के लिए मकान दे देना, ये बहुत छोटी सी सेवा है। आज इसी तरह की सेवा का प्रचार है, और इस सेवा के पीछे उद्देश्य क्या है? धर्मांतरण। और उसी सेवा की हम प्रशंसा करते हैं कई बार कि अरे अपने यहां क्या है, देखो वहां क्या सेवा करते हैं वो। काहे की सेवा? जड़ पदार्थों की सेवा, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना सेवा है क्या, या कि हमारे जीवन के कल्याण के लिए और सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण ये देना, ये सच्ची सेवा है, या कि रोटी कपड़ा दे देना ये सच्ची सेवा है। एक व्यक्ति जेल में पहुंचे, आज की सेवा का क्या सोच है? जेल में पहुंच करके उन्होंने कहा कि अरे यहां कैदियों को ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता है, मैं कहूंगा जाकर के और इनके लिए ठीक ठीक भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन पेपरों में निकला, फलाने पहुंचे थे और उन्होंने सबके लिए कैदियों को और बढ़िया मिठाइयां बंटवाई, अच्छा भोजन बंटवाया, जय जयकार हो गई। कुछ दिन के बाद एक जनाब और पहुंचे, आप सब समझ रहे हैं कौन पहुंचते हैं जेल में, जिनको अपन अपनी मेहनत से वोट डाल करके जिता देते हैं। अभी तक जीतने के बाद अभी तक एंजॉय कर रहे हैं सब अपनी जीत का। देखना, काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास आए हों, आए भी होंगे तो माला पहनने के लिए आए होंगे, इसलिए नहीं आए होंगे कि कोई जो मैंने कहा था वो काम हो गया आपका कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब पहुंचने के बाद वहां सब एक सही हो जाता मामला। वो क्या सेवा का स्वरूप जानेंगे? व्यक्ति जब तक अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर नहीं उठता तब तक किसी की सेवा नहीं कर सकता। त्याग करने वाला ही सेवा कर सकता है। अपने भौतिक सुख सुविधा के प्रति जिसकी आसक्ति है वो दूसरे की क्या सेवा करे? गए वो अपने यश ख्याति और वैभव के लिए, करते हैं लोग सेवा, सेवा का ढंग ये हो गया। उन्होंने कहा अरे आपने यहां पर भोजन तो बंटवा दिया पर देखा नहीं कितने बीमार सीमार हैं, मेरी तरफ से सबको औषधि। चलिए साहब, दूसरे दिन फिर पेपरों में छा गया कि फलाने बहुत बड़े ये पहुंचे थे और उन्होंने सबके लिए औषधि बंटवाई। कुछ दिन के बाद फिर एक व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने कहा ठंड इतनी पड़ रही है और इनके पास तो ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मेरी तरफ से कंबल बट गए। कंबल बट गए, उनका भी नाम पेपरों में निकला। कुछ दिन के बाद एक बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, उनको जेल नहीं ले जाया गया, जेल के बाहर ही से खड़े खड़े उन्होंने कहा कि इन सब के लिए जेल में ही बंद रख करके अच्छा भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, कंबल दे दिया, औषधि करवा दी, अरे मेरी मानो तो इन सबको माफ करके जेल से मुक्त कर दो। कोई ने नहीं सुना, उनका नाम पेपर में भी नहीं निकला। मुझे ये बताओ कि जेल में बंद रख करके और सारी सुख सुविधाएं दे देने वाली सेवा बड़ी सेवा है, या कि इस संसार के, इस शरीर के बंधन से मुक्त करके और
मुक्ति का आनंद देने वाली सेवा सच्ची सेवा है। और अपन कर क्या रहे, इसी को, इसी शरीर की सेवा में लगे हुए अपने या कि दूसरे की, उसको सुख सुविधाएं जुटाते हैं वही सोचते हैं कि यही सेवा है। नहीं भैया, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी सेवा रत्नत्रय देना। आचार्यों ने लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र देना ही, रत्नत्रय की शिक्षा देना ही सबसे बड़ी सेवा है, और रत्नत्रय को स्वयं धारण करना ये और बड़ी सेवा है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसके जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना से करते हैं। भगवान की सेवा उनकी पूजा करके हम करते हैं, मुनि जनों की सेवा उनके पैर दबाकर उनको आहार इत्यादि दे करके करते हैं, जिनवाणी माँ की सेवा हम उसका स्वाध्याय करके करते हैं, और उससे दो बातें अपने जीवन में कल्याण की सीख करके उसकी सेवा करते हैं। ये अगर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की सेवा करना सीख लेवे तो भी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। सेवा भी किसकी करनी चाहिए, सेवा के लिए पात्र कौन है और अपात्र कौन है, अपने यहां तो गुण रागात, जिसके भीतर गुण है, और गुण कौन से हैं, कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही गुण है। जिसके पास रत्नत्रय रूपी गुण है उसकी सेवा करनी चाहिए, और भावना उसके जैसे गुणों को प्राप्त करने की होनी चाहिए, तब वास्तव में यही सेवा श्रेष्ठ है। या कि जो हम सेवा के लिए कोई दान इत्यादि देते हैं वह भी सेवा का एक ढंग है। उसमें हम सब समझते हैं कि दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, और वो चार संघ कौन से हैं, मुनि आरिका शावक शाविका, ये सब गुणवान हैं, ये सब रत्नत्रय की आराधना में लगे हुए लोग। श्रावक शाविका भी रत्नत्रय की आराधना में लगे हुए हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के मानने वाले के लिए जो भी हम उपकार करते हैं वो सब हमारे जीवन के लिए ऊंचा उठाने वाला, क्यों हम उनसे निरंतर उनके जैसे बनने की प्रेरणा लेते रहते हैं। इसलिए उनकी की गई सेवा खाली नहीं जाती, वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। इस तरह ये सेवा का जो ढंग है वो हम वर्तमान में हर व्यक्ति अपना सकता है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छे भले लोगों के बीच उनकी अच्छाइयों और भलाइयों को महत्व दें, और इसी तरह से उनकी कोई उपकार बन सके तो वो करें, जिससे कि उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिले। मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूँ, सेवा कौन कर सकता है जिसके अंदर दूसरे के उपकार करने की भावना है लेकिन प्रति उपकार में कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। सेवा तो निस्वार्थ ही हो सकती है। ये बौद्ध ग्रंथों में उपगुप्त नाम के एक भिक्षु की घटना आती है। वासव दत्ता नगर वधू हुआ करती थी उन दिनों, बुद्ध के जमाने में। वो बहुत सुंदर थी, सभी लोग उन्हें चाहते थे लेकिन वे किसी को नहीं चाहती थी। उनका ध्यान भिक्षु उपगुप्त की तरफ था। उन्होंने एक दिन रास्ते में जब भिक्षु उपगुप्त मिले तो उनसे कहा भी कि यदि आप मुझे स्वीकार करें तो अपना जीवन मैं आपके साथ व्यतीत करूं, शांतिपूर्वक धर्म पूर्वक मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। सब मेरे देह से प्रेम रखते हैं, मेरी आत्मा के कल्याण की बात तो किसी के भी भीतर नहीं है। उपगुप्त ने कहा कि जब समय आएगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अभी समय नहीं आया। ठीक है, और भिक्षु से क्या कह सकते थे, भिक्षु चले गए। वासव दत्ता लोगों के बीच, और जिस किसी तरह से जो उसका अपना व्यवसाय था वो अपना करते हुए और दिन व्यतीत करने लगी। 20 बरस बीत गए। शरीर से प्रेम रखने वालों ने उसके शरीर का उपयोग किया,
और एक दिन जीर्ण शीर्ण उस देह जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, फिर उसे कौन पूछता है। एक सड़क के किनारे और बहुत जीवन के अंतिम क्षण मुश्किल से व्यतीत कर रही है। भिक्षु वहां से गुजरते हैं, रात के अंधेरे में कराहने की आवाज सुन करके देखते हैं कि कोई है जिसे मदद की आवश्यकता है, और जाकर के उसे अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। एक सप्ताह बहुत सेवा करने पर जब बेहोशी टूटती है, आंख खुलती है, तो देख करके वो दंग रह जाती है। अब आए आप, मैंने तो आपसे वर्षों पहले कहा था, पर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया और ये कह के चले गए कि जब आवश्यकता होगी तब आ जाऊंगा। तो भिक्षु ने यही कहा कि उस समय मेरी आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता तो तुम्हारे लिए अब मेरी है जब सबने ठुकरा दिया है, जब किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अब मेरी आवश्यकता तुम्हारे लिए अवश्य है। मैं तुम्हारी सेवा करके और तुम्हें इस योग्य बनाऊं ताकि तुम अपना कल्याण कर सको। ये घटना पढ़ करके और मैं हमेशा सोचा करता हूं कि अगर संसार में किसी का उपकार करना है, किसी की सेवा करनी है, तो हम उसकी चेतना को विकसित करने के लिए जब तक अपने भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई उपाय कर ही नहीं सकते। जितना अधिक हमारे जीवन में त्याग होगा उतनी हम दूसरे की सेवा कर पाएंगे। अगर हम ही अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में लगे रहेंगे, हम ही अपने भौतिक सुखों के लिए और अपना समय व्यतीत करते रहेंगे, तो बताइएगा हमें कहां समय मिलेगा कि जो हम दूसरे का उपकार कर सकें। इसलिए हम थोड़ा सा समय निकाल करके अपने अंतरंग में दूसरे के उपकार की भावना रखते हुए सेवा करें, और सावधानी ये भी रखें कि सेवा करके अहंकार ना करें, सेवा करते समय संकलेश भी ना करें। सिर्फ सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उससे मेरा क्या लाभ होगा यह भी नहीं सोचना चाहिए। वो तो मेरा कर्तव्य है, इसमें लाभ हानि का क्या। कल के दिन तो फिर हम भगवान की पूजा से भी पूछेंगे कि भगवान की पूजा करने से क्या लाभ, मंदिर जाने से क्या लाभ, जैसे अपन पूछते हैं। भैया ये लाभ हानि का झगड़ा मिट जाता है, यही बहुत बड़ा लाभ है। नहीं तो ये तो दुकानदारी हो गई फिर, कि क्या लाभ है और क्या हानि है। ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरी स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए मैं कर रहा हूं। जैसे कि सांस लेने से क्या लाभ, भाई नेचर, वो तो मेरा स्वभाव है, सांस लेऊंगा मेरे जीवन के लिए। जैसी सांस बिल्कुल अनिवार्य है, ऐसे ही दूसरे का उपकार करना मेरे लिए जिस दिन अनिवार्य लगे, तब फिर ना उसमें अहंकार आएगा ना संकलेश होगा। आज अपन देखते तो हैं, हम लोग अगर किसी का उपकार करने के लिए कुछ अपनी चीज देते हैं, दान इत्यादि के रूप में भी देते हैं, तब भी कितना संकलेश करके देते हैं, दिखता नहीं है, पर अंतरंग में झांक करके देखें तो संकलेश स्पष्ट दिखाई देता है। अगर नाम नहीं लिखा जावे तो कितनी बार उलाहना देने का मन होता है कि देखो तो हमने इतने पैसा दिया, अभी तक नाम नहीं लिखोगा। और अगर हमने दिया है और अनाउंसमेंट नहीं हो प्रॉपर ठीक ढंग से, तो कैसा संकलेश होता है कि इतना दान दिया और एक बार भी नाम नहीं बोल रहे और सबके तो बोल रहे। ये जो दिया गया है, ये जो उपकार किया गया है, ये संकलेश पूर्वक किया गया, जिसके देने में भी संकलेश हो रहा है और जिसके दे देने के बाद भी संकलेश बना रहता है। चार लोग अगर ऐसी जगह पटिया लगाओ जहां कोई नहीं देखने वाला हो तो तकलीफ, बहुत प्रकार की चीज है। और अगर कोई हमें ज्यादा ध्यान नहीं देवे, मान सम्मान नहीं देवे, वहीं पहुंच करके जहां हमने दान दिया है, मान लो इसी क्षेत्र के लिए दान दिया और अपन कभी आवे और इतने कोई पूछे ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बताने का मन होगा कि तुम नए आए हो, लगता है मैनेजर साहब तुम्हें मालूम नहीं है हमने तो कितने पैसा दाई थी। इसका मतलब कि हमने दिया ही नहीं, हम तो भुना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन कहां, हमने कुछ देकर के कुछ उसके एवज में पाने की कोशिश की, जैसे कि 50 रुपए देते हैं सो दुकानदार सामान पकड़ा देता 50 रुपए का, सो ऐसे ही हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये संकलेश पूर्वक दिया गया दान हमारे जीवन को, ये उपकार हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाता। इसी तरह अहंकार पूर्वक, अहंकार पूर्वक कब देते हैं, जबकि देख लेते हैं कि कौन कौन दे रहा है, ये भी दे रहे हैं मैं भी दे रहा हूं, मैं दे करके बताऊंगा, आप सबसे ज्यादा दे करके बताऊंगा, और फिर बढ़ाते चले जाते हैं। काहे के लिए बढ़ा रहे हैं, हिम्मत नहीं भी है तब भी इस अहंकार वश की, देखा मेरे से ज्यादा। उसमें लिखा कि लोगों को चमत्कृत कर देने वाला दान देना भीतर के छिपे हुए अहंकार को संतुष्ट करने के लिए की गई प्रक्रिया है। हमारे भीतर का अहंकार तब पुष्ट होता है जब हम दूसरे को चमत्कृत करने वाला कुछ दे देवे कि देखा आज तक किसी ने नहीं दिया होगा मैंने दिया। इस अहंकार से भर करके भी नहीं देना, ये मान करके कि मेरा कर्तव्य है मेरा दायित्व है, और ये मान करके कि लेने वाले ने ले लिया, नहीं लेता तो क्या कर लेता मैं। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता। लेकिन अब गणित उल्टे हो गए, देने वाले को हम बड़ा मान रहे हैं लेने वाले को छोटा, लेकिन जैन दर्शन में अभी भी ये चीज बनी हुई है। अच्छा बताओ, लेने वाले मुनि महाराज देने वाले श्रावक से बड़े हैं या कि छोटे? श्रावक के सामने रोज उनका हाथ फैलता है और श्रावक का हाथ ऊपर रहता है देने के लिए, फिर भी श्रावक ये मान के चलता है कि मैं बहुत छोटा हूं। इन्होंने स्वीकार कर लिया, अगर हाथ बंद कर लेते तो क्या कर देते, मेरा देना सार्थक हो गया। जहां देना सार्थक हो जावे तो समझना वास्तव में वो श्रेष्ठ दान, जहां देने के बाद अहंकार और संक्लेश हो वो श्रेष्ठ दान नहीं। जहां सार्थकता मालूम करे कि अच्छा हुआ जो मैं दे सका, इस तरह की भावना से यदि हम परोपकार करते हैं सेवा करते हैं तो वो सेवा हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाती है। आचार्य महाराज से किसी ने सन 1980 में, कोई विद्वान ही थे, और वहां पूछ दिया था कि महाराज भले ही मुनि महाराज बड़े हों लेकिन एक जगह तो उनका भी हाथ नीचे रहता है, श्रावक का ऊपर रहता है। तो आचार्य श्री भी बड़े विनोदी स्वभाव के हैं, वो भी ऐसी बात कह देते हैं कि सब मुश्किल में पड़ जाते हैं लेकिन हंसी हंसी में बड़ी बात भी कह जाते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि सुनो, मैं तुमसे पूछता हूं कि जो हाथ ऊपर रहता है वो कांपता है या नीचे वाला, जो नीचे रहता है वो कांपता है? ऊपर वाला कांपता रहता है देने वाले, नीचे वाला नहीं कांपता। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि देने वाला अपना सौभाग्य समझ के दे रहा है, बताइए। जबकि होना यह चाहिए था कि देने वाले को बड़ा होना चाहिए था, नहीं, वो कह रहे हैं कि देने वाला तो सौभाग्य समझ रहा है कि आपने कृपा करी जो स्वीकार कर लिया, आप अगर स्वीकार नहीं करते तो मेरा ये सब व्यर्थ ही हो जाता। कैसा लगने लगता? सारा व्यर्थ लगने लगता। मैं तो रोज देखता हूं लोगों को, अगर कोई चीज नहीं लो तो वो बनाई हुई चीज कैसे लगने लगती है? अब जो काला ही है नहीं है महाराज ने धरी रही, अब खाई नहीं, मैंने ऐसा लग रहा है कि क्या कोई मतलब ही नहीं इन सब चीजों का, ऐसे हो गई वो थोड़ी देर के लिए, और ले लेंगे तो सार्थकता मालूम पड़ती। ऐसा ही हर क्षेत्र में क्यों नहीं करते अपन? ऐसे ही कोई अगर हमारी सेवा ले ले, कोई हमारे उपकार को स्वीकार कर ले तो हमारा मन गदगद होना चाहिए। अगर इस तरह हम इस दान की प्रक्रिया को या कि उपकार और सेवा की प्रक्रिया को करते हैं तो ये छोटी सी प्रक्रिया भी हमारे जीवन को उज्ज्वल बना सकती है। अच्छी संगति और परोपकार की भावना, ये दोनों ही उपाय अपने जीवन को अच्छे बनाने के हैं। जितना जिससे बने अपने जीवन में इन दोनों साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यज्ञ अग्नि स्वरूप तुम्हारा,
अक्षय पद निर्वाण। हुए कल्याण प्रभु तेरे, पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर ज्ञानी, अंतर्यामी अंतर ज्ञानी, प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। निर्मल शांत करे जो चित्त को, निर्मल शांत करे वही गंधोदक मुझे दान कर दे, वही गंधोदक मुझे दान कर दे। पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। विषय विकार को त्यागा, तप कर विषय विकार को त्यागा, सार नहीं संसार में कोई, इसीलिए संसार को त्यागा। क्या चाहूं सुन ले, मैं क्या चाहूं सुन ले, सुन ले सुन ले, अपने कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। प्रभु हे वीत राग सर्वज्ञ प्रभु, मुझे मेरा दरस आसान कर दे, मुझे मेरा दरस आसान कर दे। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। भव की दे भक्ति दे भगवान कर दे अभी इतना ही भगवान कर दे। यहाँ कौन है ऐसा तेरे सिवा, यहाँ कौन है ऐसा तेरे सिवा, औरों को जो अपने समान कर दे, औरों को जो अपने समान कर दे। तेरे पांच हुए एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे, हो एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे।
वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है।